हेलो एंड वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम में से हर कोई ये जानता है और इस बात को स्वीकार भी करता है कि आज जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं वो सही नहीं है। सही राह तलाशना भी चाहते हैं लेकिन शायद ताकत नहीं जुटा पा रहे कि हमें सही राह क्या करना है, क्या कुछ ऐसा है जो हमारे समाज में गलत होता जा रहा है और कौन सा रास्ता ऐसा है जो सही है। लिविंग वैल्यूज एक ऐसी ही श्रृंखला है जिसमें हम उन सभी मूल्यों को फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बैलेंस की। बैलेंस यानी कि संतुलन। किस तरह से अलग अलग बातों में जिंदगी के कई जो पड़ाव हैं, कई जो मुद्दे हैं, कई पहलू हैं, उनमें किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इस वैल्यू के बारे में। हम हर रोज़ की तरह हमारे साथ हमारी खास मेहमान माउंट आबू से आई हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। और बहन, सबसे पहले यही बात करते हैं कि चाहे जितनी भी हम कोशिश कर लें, हम वो बैलेंस बनाना तो चाहते हैं लेकिन उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हम चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, मैनेज कर लें किसी तरह से, वो संतुलन बना लें, लेकिन वो संतुलन बिगड़ ही जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा?
बैलेंस का मतलब है कि हर प्रकार से बैलेंस। कई बार हम सोचते हैं आज मुझे बहुत हंसना है, तो हम हंसते रहते हैं, फिर अगली बार कोई बात हो गई तो बस रोते ही रहते हैं। तो हंसना और रोना, लेकिन जीवन में बैलेंस माना हंसने की भी लिमिट हो। और रोना तो वास्तव में ये जीवन का एक अंग होना ही नहीं चाहिए। बैलेंस माना हर्षित मुख भी रहे और गंभीर भी रहे। इसको हम कहते हैं बैलेंस। जिस समय हम सबके साथ हैं हम बालक हो जाएं, और जब हम अकेले हैं तो मालिक हो जाएं। तो मालिक और बालक, इसका बैलेंस। हर्षित मुखता और गंभीरता, इसका बैलेंस। हम चाहें तो अकेले में भी रहें तो भी आनंद में रहें, और अगर संगठन में रहें तो भी खुश रहें। कई हम देखते हैं लोग हैं जो जब अकेले होते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं, जब संगठन में होते हैं तो बड़े खुश होते हैं।
तो डिपेंडेंसी हो जाती है। बिल्कुल।
तो जीवन में बैलेंस माना हर प्रकार से संतुलन। हम जब किससे स्नेह दें तो स्नेह भी दें, लेकिन जब उसे हम डिसिप्लिन सिखाएं तो डिसिप्लिन भी पूरी।
बिल्कुल। लव और डिसिप्लिन के बीच का बैलेंस पे भी हम आएंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रोफेशनल और घर। जो है प्रोफेशन और घर, देखा ये जा रहा है जितने भी मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं या जिस भी तरह के काम, आजकल के दौर में अगर हम काम को भी देखें तो काम भी इतना बदल चुका है। मीडिया देखें तो दिन रात का काम है, कॉल सेंटर्स की बात करें तो दिन रात का काम है, मल्टीनेशनल्स की बात करें कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में देखा ये जा रहा है कि प्रोफेशनली अगर हम प्रोफेशन की तरफ बढ़ जाते हैं तो 100% उसी को देते जाते हैं और पूरा घर निग्लेक्ट हो जाता है या बाकी सारे आयाम ज़िंदगी के निग्लेक्ट हो जाते हैं, और अगर हम सिर्फ घर पे ही सीमित हैं तो प्रोफेशन हमारा निग्लेक्ट हो रहा है। तो वो जो बैलेंस है, वो चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। बाहर की बात बाहर तक छोड़ के, घर की बात घर तक छोड़ के, ये बहुत इम्पॉसिबल सा होता नज़र आ रहा है। बिकॉज वी आर ऑल कैरिंग एवरीथिंग, द होल बैगेज टू होम ऑल्सो एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ होम टू द प्रोफेशन। हाउ टू एक्चुअली कॉम्बैट दैट, हैंडल कैसे करें?
ज़रूर ये आवश्यक है कि जिस समय हम दफ्तर में हैं तो दफ्तर में ही हम उनकी बातों में ही हम मग्न रहें, उनकी बातों में ही हम रहें, लेकिन जब घर में आते हैं तो दफ्तर को हम वहीं छोड़ कर आएँ। कई बार जो दफ्तर के भी फाइल्स हम घर में ले आते हैं और फिर जो घर की प्रॉब्लम्स है वो दफ्तर में ले जाते हैं। ये एक कला हमारे अंदर अगर आ जाए कि दफ्तर की बात दफ्तर में, घर की बात घर में, तो हम एक सुंदर बैलेंस बना सकते हैं।
लेकिन आज के दौर में ये हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक्सटेंडेड आवर्स की बात है कि रात को सोना ही नहीं है, रात को ही काम हो रहा है तो दिन को सोना है, जितने भी घंटे मिलेंगे सोने के, सारा यही इम्बैलेंस जो क्रिएट हो चुका है। लैपटॉप घर पे ही आएगा, नेट पे कनेक्टिविटी कंटिन्यूस रहेगी, ये भी तो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब एक बड़ी मजाक की ये बात की जाती है कि एक फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो, अब कहते हैं पति पत्नी और लैपटॉप, ये एक फिल्म आएगी। तो ये जो बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे हैं और कैसे बनाया जा सकता है?
क्योंकि हम अपनी समस्याएं कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमें ये आ जाए कि जब कोई बात हुई वो बात पूरी हुई तो फुल स्टॉप, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लिखते हैं और फुल स्टॉप लिखने के बाद ही दूसरा वाक्य शुरू होता है, इसी प्रकार अगर हम जो भी कार्य में हम हैं वो पूरा हुआ तो उसे हम फुल स्टॉप दे सके और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू करें। होता क्या है, जैसे हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं, एक फाइल खोला, फिर दूसरा फाइल खोला, तीसरा फाइल खोला, अब पहले फाइल को हमने मतलब क्लोज़ किया ही नहीं और दूसरा फाइल खोल दिया, फिर तीसरा खोल दिया, तो बेचारा कंप्यूटर भी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर मुझे खोलना क्या है, फिर वो हंगअप हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी एक कला हम जीवन में सीखें, कैसे बैलेंस रखें, इन द सेंस एक फाइल समाप्त करें फिर दूसरा फाइल खोलें, दूसरा पूरा करें तब तीसरा खोलें,
और बाहर का काम खत्म करें। वी शुड स्टार्ट सेइंग नो एक्चुअली।
हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि समझो अब घर में मैं आया हूँ और दफ्तर की बातें मुझे याद आ रही है तो मैं उस समय कहूँ कि नहीं, दफ्तर की बातें दफ्तर में, घर की बातें हैं तो घर में, घर की बातें दफ्तर में मुझे नहीं ले जानी है। तो इसीलिए नो करना आना चाहिए, एक तो नो करना आना चाहिए कहाँ नो करना है और दूसरा लेट गो करना आना चाहिए। अगर ये हमें सही रूप में आ जाए तो हम जीवन में बैलेंस करना सीख सकते हैं।
बहुत आपने अच्छे तरीके से बताया हमें कि लेट गो करना, वन इज़ नो ऑफ कोर्स, देन सेकंड लेट गो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पोजेसिव हो जाते हैं, हमें लगता है कि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया दूसरा करेगा तो मेरे से ज़्यादा नंबर उसे मिल जाएंगे, यू नो, या मुझसे ज़्यादा उसकी तरक्की हो जाएगी या उसकी प्रमोशन हो जाएगी, बॉस ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो लेट गो इज ऑफ दिस दीज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो आई थिंक।
और जीवन में एक सुंदर बैलेंस, इन द सेंस कि बैलेंस रखना एक कला है। देखिए मनुष्य कई प्रकार की कलाएं सीखता है ना, नृत्य कला है, संगीत कला है, गायन कला है, चित्र कला है, ये सब कलाएं हैं। ये कलाएं कैसे आती है? निरंतर अभ्यास से,
प्रयास, यस,
अभ्यास से आती है, ऐसे ही नहीं आती है। अब देखिए हम चल रहे हैं तो वो भी सभी चल रहे हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर, पक्षी सब चलते हैं, जिसको पैर है वो चलेंगे। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है तो कैसे चलता है? एक व्यक्ति रास्ते पर चल के भी गिर सकता है, दूसरा व्यक्ति रस्सी पर चलकर भी गिरता नहीं है। इसको हम कहते हैं बैलेंस, क्योंकि उसने अभ्यास रखा और साथ साथ उसके अंदर में एकाग्रता है, उसके आगे एक लक्ष्य निर्धारित है। तो अभ्यास, एकाग्रता, लक्ष्य, ये सब उसके जीवन में मायने रखती है, इस आधार पर वो संतुलन बनाए रख सकता है। तो जीवन में संतुलन माना जीवन में कई ऑपोजिट्स हैं, पर उन ऑपोजिट्स को हम मिला करके चल सकें तब हम जीवन में बैलेंस रख सकते हैं।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ हमें ये जाननी है कि संतुलन एक कला है। जैसे हम बाकी कलाओं को सीखने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास से सीख पाते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस जो हम अगर एफर्ट करते रहेंगे तभी हम बैलेंस को भी बना पाएंगे। अब इस पर आते हैं कि बैलेंस ज़रूरी क्यों है, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ।
बैलेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही सच्चा न्याय है। अब जिस प्रकार हम एक बैलेंस कहते हैं, जैसे स्केल में हम देखते हैं, उसमें भी बैलेंस होता है। हम बैलेंस रखते हैं ताकि जो वज़न हमने रखा है दूसरी तरफ पलड़े में वैसे उतना ही वज़न हो तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस तब हो सकेगा जब कांटा एकाग्र हो, ये तब हो सकेगा जब जो हॉरिजॉन्टल रॉड हो वो सीधी हो। और ये बैलेंस भी आवश्यक है क्योंकि इसी में ही न्याय है। आप देखेंगे जैसे हम कोर्ट में जाते हैं जिसे न्याय मंदिर कहते हैं, तो उस न्याय मंदिर में क्या दिखाते, एक न्याय की देवी, उसके हाथ में एक बैलेंस है और इसकी आँखों पर पट्टी है और वो बैलेंस बता रही है कि ये सच्चा न्याय माना वो ब्लाइंड है, पक्षपात के बिना है। हम क्या है, पक्षपात में आ जाते हैं। किसने मेरी महिमा की तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, किसने मेरी ग्लानि की तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार गीता में आता है कि स्थित प्रज्ञ अवस्था, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान, इसको कहते हैं संतुलन, इसको कहते हैं बैलेंस। अगर हम एक तरफ झुक जाते हैं और दूसरा पलड़ा ऊपर जाता है और एक भारी हो जाता, ये भी ठीक नहीं है। तो जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने अपोजिट्स आती है, उन अपोजिट्स में हम इक्वल होकर के रहें। चाहे मान मिला तो भी ठीक, अपमान मिला तो भी ठीक, महिमा की तो भी ठीक, निंदा की तो भी ठीक। इस ये तब हो सकेगा जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम किसको भी एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट करते हैं फिर हम उसमें दुखी हो जाते हैं।
बिल्कुल। आज जब हम रिश्तों की बात देखते हैं तो उनकी परिभाषाएं बदल चुकी हैं। जहां एक वक्त ऐसा था कि जब पिता माता पिता थे तो बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन में रखने का एक तरीका किया जाता था, प्यार भी था लेकिन अनुशासन ज़्यादा होता था। आज देखा ये जा रहा है कि इतना प्यार उड़ेला जा रहा है और अनुशासन कहीं है ही नहीं, उनकी हर बात को तवज्जो देकर उन्हें स्वीकारा जा रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो भी क्या उनकी सही परवरिश है? और जो हम ये अनएक्सपेक्टेड इतना सारा प्यार दे रहे हैं, ये भी कहीं हमारा अपना ही गिल्ट फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि हम समय नहीं दे पा रहे तो हम उनकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं और डिसिप्लिन कहीं ख़त्म हो गया है। तो वो इम्बैलेंस एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे फिर बच्चे, फिर हम एकदम से सारे अधिकार छीन लेंगे। तो ये एक समस्या है।
ज़रूर, क्या है, क्योंकि माता पिता का बच्चे में बहुत मोह होता है और इतना मोह होता है वो समझते हैं कि बस बच्चे की हर इच्छा पूरी की जाए उस मोह के कारण। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है और मुझे उस पेशेंट की सेवा करनी है। अब वो डायबिटिक पेशेंट है लेकिन वो कहता नहीं मुझे मीठा खाना है। अब क्योंकि मेरा उसमें मोह है, मैं कहूँगी नहीं नहीं खाने दो खाने दो। अब डॉक्टर कहेगा कि नहीं उसको बिल्कुल मीठा नहीं देना, परंतु क्योंकि मेरा मोह है तो मैं कहूँगी क्यों इसकी इच्छा को हम नकार रहे हैं, इसको दे दें। अब ये मोह वास्तव में उसका नुकसान कर रहा है। तो पहले तो हम मोहवश समझते हैं बच्चे को दे दो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को साथ साथ समझ नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, उसका सदुपयोग कैसे करना है ये नहीं बताया, तो नेचुरली धीरे धीरे उसका दुरुपयोग करता जाएगा। फिर जब अति हो जाएगी फिर तो टू लेट हो जाएगा।
बिल्कुल।
तो हम लोग एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार होता है तो कुम्हार घड़े को कैसे तैयार करता है, बाहर से थपथप करेगा मना दबाएगा और अंदर से उसको प्यार देगा। कभी बाहर से प्यार देगा तो अंदर से थपथप करेगा मना से मारेगा। तो जब एक बाहर से प्यार अंदर से मार या बाहर से मार और अंदर से प्यार, तो इससे उसको शेप आता है। इसी प्रकार हम परिवार में देखते हैं बहुत सुंदर के बस संतुलन होता है। माँ बहुत प्यार देती है तो पिता थोड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, कई बार पिता बहुत प्यार देता है माँ डिसिप्लिन्ड होती है, तो दोनों ही चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे को हम प्यार के साथ साथ समझाएं ज़रूर। डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि हम मारते ही रहे बच्चों को।
समझ देना
विजडम देना, ये डिसिप्लिन है। उसको ये पहचान देना कि तुम्हारे लिए रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि हमें उसका अनुभव है, हम उससे गुजरे हैं। तो ये समझ देना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार हम मोह के वश समझ तो देते नहीं। हाँ, पैसे मांग लिए तो पैसे दे देते हैं, समय है नहीं जो हम उनको कुछ समझ भी दें।
और दूसरी तरफ ये कि हम क्योंकि समय नहीं दे रहे हैं तो गिल्ट फैक्टर में आके, और वो भी समय इसलिए कारण नहीं दे पा रहे क्योंकि अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं हम। इट्स एक्चुअली अ वेरी चेन रिएक्शन, कि अपने प्रोफेशन और परिवार में अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे तो सही समय नहीं दे रहे, और इसी कारण हम उनके साथ भी जो रिश्तों को एक नई उसमें लेकर जा रहे हैं। यहाँ अब हम इस पर आते हैं कि संतुलन की जो हम बात कर रहे हैं, बैलेंस की जो हम परिभाषाएं तलाश रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी के अलग अलग आयामों में बैलेंस देखना चाहिए। अभी बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ। एक स्पिरिचुअल हमारा एस्पेक्ट है, एक हमारा ये यहाँ की दुनिया का एस्पेक्ट है, इन
बिल्कुल
दोनों के बीच का कई बार देखा है कि बस पूजा पाठ ही करते जाएंगे, पूजा पाठ ही करते जाते हैं या उसी में ही लीन हो जाते हैं, तो परिवार की जिम्मेदारियाँ कहीं ख़त्म होने लगती हैं, कहीं हम जिम्मेदारियों में और इस चीज़ों में इतने लग जाते हैं कि कहीं जो अपना आध्यात्मिक जो करना है वो भूलते जाते हैं।
आज हम दुनिया में देखते ना, एक तरफ है बिल्कुल भौतिकवाद, मटीरियलिज्म, इतने हद तक मटीरियलिज्म चला गया जिसको हम कहते हैं इंद्रियों का चरम सुख, पर वो चरम सुख जो इंद्रियों का है वो विवेक शून्य आनंद के रूप में बदल रहा है। आनंद एक अलग चीज़ है, पर वो जो विवेक के विपरीत हो, जिसमें विवेक नहीं है, जैसे नाच रहे हैं तो नाच ही जा रहे हैं, नाच ही जा रहे हैं, गा रहे तो गा ही रहे हैं, मानो कूद रहे तो कूद ही रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में एक लिमिट चाहिए ज़रूर।
वही अति होती जा रही है चीज़।
हाँ, तो ये जो मटेरियल सुखों में इंसान जा रहा है उसमें इतने अति तक जा रहा है, उस अति का वो अंत अंत क्या आ रहा है कि उसी में फंस गया है। जैसे एक मकड़ी होती है ना, वो मकड़ी अपने मुंह से ही जाल निकालती जाती निकालती जाती निकालती जाती, फिर उसी में फंस जाती है। जहाँ मकड़ी की जाल होगी वहाँ मकड़ी ज़रूर होगी, वो अपने आप नहीं निकल सकती है जब तक उस जाल को अपने अंदर फिर से न खा जाए, क्योंकि उसके अंदर से ही निकलती है। तो हम भी जैसे मकड़ी की तरह एक ऐसी जाल फैला चुके हैं संसार में जो हम उससे निकल ही नहीं पाते, या तो फिर दूसरी ओर बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाते, या समझ से बस सब हम तो सन्यासी है। अब वो भी गलत है, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान ने ये तो नहीं कहा है कि कुछ भी छोड़ो।
बिल्कुल। और अपना धर्म, मनुष्य धर्म जो है वो निभाना भी
हाँ,
जरूर।
तो छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी कहीं नहीं, ये मध्य मार्ग है और
हाँ।
इसी को ही हम बैलेंस कहते हैं। और राजयोग के माध्यम से हम यही बैलेंस सीखना चाहते हैं, हम अनुभव करना चाहते हैं कि वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं है। अब जैसे कई जो सन्यासी क्यों बनते हैं, वो समझते हैं ये धन माया है, स्त्री माया है, ये बच्चे माया है, ये घर गृहस्थी माया है, ये माया माया कह करके उसको बस छोड़ देते हैं और समझते हैं कि बस हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें तो सन्यासी बन जाना है, हमें तो ये संसार चाहिए ही नहीं। पर हम लोग क्या कहते हैं राजयोग के अंतर्गत, हम कहते हैं ये माया नहीं है, माया को समझना है। माया माना इल्यूजन, माया माना जो वास्तविकता नहीं है, ये एक भ्रम है। अब स्त्री है, हम उसको माया नहीं कहेंगे, वो तो एक शक्ति है। दिखाते कि जब शिव ने देखा कि असुर बहुत बढ़ गए हैं दुनिया में, तो शक्ति को प्रकट किया असुरों का नाश करने के लिए, तो वो तो शिव शक्ति है, नारी शक्ति का बड़ा गायन है। कोई कहे बच्चे सब माया है, हम कहते बच्चे माया नहीं है, पर उनके प्रति जो मोह है, जो पोजेसिवनेस है, वो माया
तो
है।
माया कहीं किसी और में नहीं, अपने आप में ही है। हम क्योंकि वो पूरा बैलेंस नहीं बना पा रहे, हम
जी
नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ों को माया मान लेते हैं।
हाँ, इसी प्रकार कोई धन को ही माया समझते हैं, ये धन माया है, या मन को भी माया समझ रहे हैं, ये मन को भी दमन करना ये सब माया है। वास्तव में धन भी कोई माया नहीं है, धन तो आवश्यक है हमारे जीवन में, पर धन के प्रति अगर लोभ है वो माया ज़रूर है। तो लोभ माया है, मोह माया है, काम वासना माया है, क्रोध माया है, ईर्ष्या द्वेष नफरत ये सब माया है, बाकी व्यक्ति माया नहीं है। तो
डेफिनेटली
हम कहते बैलेंस इस प्रकार रखो कि उसको माया भी नहीं हम समझें, उसके प्रति हम नफरत भी न रखें, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसमें फंस जाएं,
जी
वो भी ना करें।
बिल्कुल। एक तरफ ये कि उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ना, और दूसरी तरफ ये है कि उसमें फंस नहीं जाना है। लेकिन आम जिंदगी में जब हम देखते हैं, जब कलयुग की जैसे हम बात करते हैं, उसमें हर तरह की ये जो बैलेंस बनाने की बात है, पारिवारिक हो, प्रोफेशनली हो, अध्यात्म और अपनी ज़िंदगी का हो, या अपने बच्चों के साथ हो, प्यार और डिसिप्लिन के बीच का बैलेंस हो, ये एक बहुत थिन लाइन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि रस्सी पर चलने वाला जो एक रस्सी पर चल रहा है वो बैलेंस जैसा हो जाता है वो, और वो बहुत मुश्किल है। कैसे जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, उनसे बचा जाए?
उनसे बचने के लिए हमें अंतर की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम अंतर की ओर ध्यान देते हैं तो बाहर हम संतुलन बनाए रख सकेंगे। हम देखते हैं कि हम अति बाह्य मुखता में चले जाते हैं तो या तो मोह में फंस जाते हैं या तो नफ़रत करने लगते हैं। तो न मोह हो न नफ़रत हो, लेकिन आत्मिक स्नेह हो, और वो आत्मिक स्नेह ही सुंदर बैलेंस है। हम अपनी आत्मा से भी स्नेह कर रहे हैं तो दूसरी आत्मा से भी स्नेह कर रहे हैं, और उस स्नेह में भी हम देखते हैं एक से स्नेह हो पर औरों से स्नेह न हो, ऐसी बात नहीं, या सब से स्नेह हो पर एक से स्नेह न हो, ये भी बैलेंस नहीं है। स्नेह हो तो सबके साथ स्नेह हो, ये है सुंदर बैलेंस जिसमें कोई भी हद न हो। और उसके लिए ईश्वर को हमें बीच में लाना होगा, क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह है। जिस प्रकार एक मैग्नेट होता है, अब वो चारों ओर सुइयां बिखरी हुई हो और वो मैग्नेट जैसे ही हम आगे लाते हैं सुइयां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, तो अगर हम बीच में परमात्मा को लाते हैं, वो नीडल है, वो एकाग्रता की हमारे आगे एक बिंदु है, उस बिंदु तक हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि सब चारों ओर एक समतल हो जाता है, इक्वानिमिटी हो जाती है, और हम एक सुंदर जीवन में बैलेंस रख सकते हैं। आपसी रिश्तों में भी हम बीच में परमात्मा को लाएं, हम परमात्मा के हैं, आप भी परमात्मा के हो, तो हम दोनों ही परमात्मा के हैं। देखो, जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा को बीच में लाएं तो सब बैलेंस में आ जाए।
और जैसा कि आपने कहा कि चुंबक की तरह उसको परमात्मा का जो बीच में लाना, मतलब एक चुंबक है जिसमें हम सब खींचे आएंगे, जिसकी तरफ खींचे आएंगे, और एक बैलेंस बनाने का जो पूरा आस्पेक्ट है, जो संतुलन है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिरु बहन, यहाँ इस मोड़ पर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेडिटेशन के माध्यम से क्या हम इस बैलेंस को, क्योंकि वही एक माध्यम बचता है आज के इस युग में, बाकी चीज़ें शायद बेमानी रह जाती हैं, इतना सोचना, या क्योंकि कंटिन्यूस एक एफर्ट, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि ये एक लगातार करने वाला अभ्यास है, बैलेंस एक कला है, तो लगातार अभ्यास से इसे पाया जा सकता है, लेकिन वो अभ्यास का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे।
ज़रूर ज़रूर, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कैसे हम पल पल पर बैलेंस रखें। हम हर वक्त अपने आप से पूछें कि क्या सही है क्या गलत है। हर वक्त हम निर्णय अपने आप को देते जाएं, हर बात को परख करके इसका परिणाम क्या होगा, इसमें सफलता किस प्रकार प्राप्त होगी, इसमें नुकसान क्या होगा, ये आगे पीछे सोच करके हम एक बैलेंस बना कर रखें। कहाँ हमें बालक बनना है, कहाँ हमें मालिक बनना है, कहाँ हमें मुस्कुराना है, कहाँ हमें गंभीर होना है, पर उसके लिए अपनी आत्मा के गुणों का हमें अंदर ही अंदर विकास करना है। क्योंकि जिस प्रकार हमने कहा कि मुझे शांति का अनुभव करना है, तो अंदर चले जा कर के शांति की गहराई में चले जाएं, कि जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है, उसी प्रकार मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं और समा करके अपने आप को शांत कर दूं। ये एक आंतरिक शक्ति के विकास का एक तरीका है, और ये जब शक्ति हमारे भीतर में अनुभव होगी, तो जब हम कर्म में आएंगे, उस कर्म के बाद हम फिर जब चाहें न्यारे भी हो सकेंगे। तो ये है जीवन के अंदर बैलेंस। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इस बैलेंस का हम अनुभव करें, भीतर जाकर स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें, डिसिप्लिन रखें, अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाएं। ये दृष्टि केवल आत्मा तक ही जाती है। हर एक के मस्तक पर एक चमकता हुआ हीरा आत्मा विराजमान है। हर एक आत्मा उस परम पवित्र परमात्मा की संतान है। इस संसार में मैं आत्मा मेहमान हूँ, मुझे न्यारा भी रहना है तो सबका प्यारा भी बनना है। न्यारा और प्यारा, यह सुंदर संतुलन हम बना सकते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, परमात्मा से सच्ची प्रीत रखकर, सबसे प्यार भी हो पर सच्ची प्रीत एक ईश्वर से हो, तब ही हम इस दुनिया में सुंदर बैलेंस रखकर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें ये बताया कि ये संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। बैलेंस ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा बहन। और सबसे खूबसूरत जो बात आपने हमें ये बताई कि अध्यात्म और जो हमारी ज़िंदगी है उसके बीच का बैलेंस, हमें गृहस्थ होते हुए ज़िंदगी में जीते हुए रहते हुए भी इस बैलेंस को कहीं ना कहीं बनाए रखना है। अगर एक पलड़ा हमें लगे कि कहीं भारी होता जा रहा है या वो ज़्यादा झुक रहा है, एक छोटी सी बात बताइए, उसे कैसे बैलेंस बनाए, कहाँ दूसरा को कैसे भारी करें।
अति लौकिकता में जाना ये भी असंतुलन है, और अति अलौकिकता में जाना ये भी असंतुलन है। तो लौकिक और अलौकिक, इसका भी सुंदर बैलेंस रखना ज़रूरी है। जो हमारा परिवार है, गृहस्थ है, बच्चे हैं, नौकरी धंधा है, वो भी संभालना है, परंतु उसमें ऐसा लुप्त ही न हो जाना है जो हम अपने वैल्यूज़ को गंवा दें, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि संभावना है कि हम अति मोह में फंस जाएं, अति लोभ में फंस जाएं, अति ईर्ष्या द्वेष नफरत में फंस जाएं, तो हम उसी के तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और इतना भी नहीं कि हम इतना अलौकिकता में चले जाएं जो बस हमें तो एक परमात्मा से ही संबंध है, दुनिया से संबंध नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है
जी।
दुनिया से भी हमारा उतना ही संबंध है, क्योंकि आखिर वो भी तो भगवान की रचना है।
बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा है कि कांस्टेंट एफर्ट है, ये एक लगातार अभ्यास है, क्योंकि बैलेंस या संतुलन एक कला है, और बाकी जितनी भी कलाएं हैं उनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा शायद ज़रूरी भी है हमारी ज़िंदगी में। और जिस तरह से हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ को किस तरह से इनकल्केट करके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाएं, यही आज हमने आपसे चर्चा की।
और एक और लास्ट में बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपने 24 घंटे में कुछ निर्धारण करें कि हमें एक घंटा आध्यात्मिकता के लिए देना है, एक घंटा इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए देना है, एक घंटा बच्चों के लिए देना है, कुछ घंटे परिवार को देना है, पत्नी को देना है, अन्य रिश्तेदारों को देना है, कितना समय मुझे दफ्तर में देना है, तो अपने जीवन का या दिनचर्या का भी एक टाइम टेबल बना दें और समय उसमें निर्धारित कर दें, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत सुंदर संतुलन बनाए बना के रख
सकते। बहुत सुंदर आपने बात की कि टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट बैलेंस इटसेल्फ।
जी
बहुत बहुत शुक्रिया शिलू बहन, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू पे आपने हमें बहुत डीप नॉलेज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहें तो हमें ईमेल द्वारा या फ़ोन द्वारा अपने विचार या अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी में हम बात करेंगे सैटिस्फैक्शन की, यानी कि संतुष्टता की। तो आप हमारे साथ इस पूरी श्रृंखला में बने रहिए, अपने मूल्यों को फिर से जीवित करने का एक प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।